आप सभी आज इस क्लास के बहाने एक बहुत विशेष हस्ती से मिलने जा रहे हैं। बाप दादा की प्रत्यक्षता में बहुत सी प्रैक्टिकल चीजें मदद करती हैं और हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर सतीश गुप्ता जी की विशेषता है कि आपने राजयोग मेडिटेशन के बहुत प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके दिखाए, जिससे दुनिया अचंभित हुई है और उस आश्चर्यचकित होते हुए बहुतों ने इस चीज को स्वीकार किया है कि प्यारे बाबा का ये ज्ञान और योग बहुत ही अनुपम है। आपने अब तक 15,000 पेशेंट्स को बिना दवाई और सिर्फ बिना सर्जरी के आपने हार्ट का इलाज, जिसके लिए स्पेशल कैड प्रोग्राम, डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज और बाबा की याद, इससे कैसे ब्लॉकेज खुल जाती है हार्ट की, इसके बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट आपने किए हैं और बहुत दिल जान से, बहुत प्यार से आप उन पेशेंट्स की संभाल करते हैं, बहुत अपनापन उन्हें फील होता है। एक भाई ने तो यहाँ तक कहा, कहते अब बीमारी ठीक होए या ना होए, डॉक्टर साहब से तो मुझे बहुत प्यार हो गया है। तो इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस उनको लगा कि शायद अब ईश्वरीय परिवार से जुड़ गए तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, बहुत अर्ली एज में जब आपका बच्चा भी छोटा था और आपके सारा परिवार बहुत समर्पित रूप से सेवाएं कर रहा है, आपकी युगल बाला बहन वो भी बहुत अच्छी तरह, बहुत टीचर क्वालिटी, वारिस क्वालिटी की आत्मा इस यज्ञ में पूरी तरह अपनी सेवाएं दे रही है। आप डबल सेवाधारी ज्ञान योग की सेवा भी करते हैं और स्पेशली पेशेंट्स को जो उन्हें चाहिए उस तरह का इलाज और ज्यादा से ज्यादा बाबा के नजदीक आने की प्रेरणाएं देते हैं। आप पहले दिल्ली एम्स में कार्यरत थे और वहां से इंडियन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, इस तरह के प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, इंडियन हार्ट जर्नल, इस तरह की काउंसिल के आप मेंबर रहे। एमडी करने के बाद जब आप ज्ञान में भी आ गए और ज्ञान में आपने कुछ विशेष एक्सपेरिमेंट किए, आप इस समय, प्रेजेंट समय, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आबू रोड, यहाँ ट्रॉमा सेंटर के नाम से जिसे जाना जाता है, आप वहां के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हैं, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी एंड मेडिसिन, और इसके साथ साथ ही सबकी प्यार से पालना करते हुए आपको बहुत से इनाम दिए गए, जो कि बाबा के घर से तो हमेशा मिलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अवार्डेड बाय हर एक्सीलेंसी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, आपको उनके द्वारा भी 22 सितंबर 2008 को इनाम दिया गया, राष्ट्रपति भवन में आपको अवार्डेड किया गया, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक रिहेबिलिएशन इन WCCPC 2007, 20th सेंचुरी अवार्ड ऑफ अचीवमेंट एंड मेडल ऑफ ऑनर फ्रॉम IBC कैम्ब्रिज इंग्लैंड इन माइंड बॉडी मेडिसिन, डॉक्टर सुशीला ठक्कर नेशनल अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च इन योगा अवार्डेड बाय एसोसिएशन फिजिशियंस ऑफ इंडिया फॉर कंट्रीब्यूटिंग रिसर्च आर्टिकल्स टू जर्नल ऑफ API, क्योंकि इस तरह का प्रैक्टिकल प्रयोग बहुत कम आत्माएं कर पाती हैं। बाबा ने आपको स्पेशल वरदानों से नवाजा है और अक्सर करके इनके दिल वाले ऐसा ग्रुप प्रसिद्ध है, आपसे सीखे हुए भाई बहन भी अन्य स्थानों पर अन्य आत्माओं की, अनगिनत आत्माओं की सेवाएं कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में वो सब दिखाई देता है जो बाबा चाहते हैं। और आपका स्वभाव, आपकी नेचर, इतनी सरलता भरी, इतना निमित भाव, इतनी निर्माणता भरी नेचर, जिससे लगता है कि आप अपने ही हैं, इसी तरह की आत्मा से, महान आत्मा से मिलने का आप सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कंजूसी ना करें, करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। आप ज्ञान और योग में बहुत अग्रणी हैं। ज्वालामुखी याद से स्वराज्य अधिकार की स्थिति कैसे प्राप्त की जाए, ये आज आप हमें समझाएंगे। और डॉक्टर का कहना सब मानते ही हैं। आप तो डबल डॉक्टर हैं, इसीलिए आपकी कही हुई बातें थोड़ा और गहराई से अंदर चली जाएंगी। इसीलिए ज्वालामुखी याद से स्वराज्य अधिकार की स्थिति प्राप्त करने का अभ्यास और इसका एक्सपेरिमेंट आप सभी करेंगे साथ साथ। अभी हम सुनते हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी से।
ओम शांति। हम सबके अति मीठे और अति प्यारे बाबा ने हमको स्मृति दिवस पर 18 जनवरी पर दो होमवर्क दिए। आप सभी को याद है बाबा ने हमें होमवर्क दिया था, याद है सभी को? दो होमवर्क बाबा ने दिए थे दो मास के लिए। बाबा ने पहला होमवर्क दिया था हर कार्य करते क्या करना है, स्वराज्य अधिकारी रहना है। ये चेक करना है रोज हमें कि हम सारा दिन में सदा स्वराज्य अधिकारी रहे नहीं रहे। दूसरी बात बाबा ने कहा कि मन पर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मन पर कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर द्वारा व्यर्थ को समाप्त करना है, व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय को समाप्त करना है। ये बाबा ने दो मास का हमको होमवर्क दिया था। दो मास में से 13 दिन तो बीत गए, है ना? 18 तारीख को दिया था और आज 31 तारीख है, आज 13वां दिन है, तो 12 दिन तो बीत चुके हैं। और बाबा ने दो मास ही समय क्यों दिया? क्योंकि बाबा अभी समय परिवर्तन का है, समय समीप है, परिवर्तन का समय समीप है। तो और इस समय को वरदान भी है कि अगले दो मास अगर हम सच्ची दिल से इस होमवर्क को करेंगे तो क्या होगा, हमें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, अर्थात हमारा हम स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे और साथ साथ हमारा मन हमारे कंट्रोल में आ जाएगा और व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय समाप्त हो जाएगा। तो आज हम आपसे यही चर्चा करेंगे गहराई से। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमें महान बनना है, महान माना 108 की माला के दाने बनना है, महान पुरुषार्थी, जो बाबा के तीव्र पुरुषार्थी, महान आत्माओं की लाइन में आना है, महान आत्माओं की माला में आना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, कैसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा? संडे को बाबा ने बताया कैसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, महीन पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कैसा करना पड़ेगा? महीनता से चेकिंग करनी पड़ेगी, है ना? जैसे वैज्ञानिक होते हैं ना, हम लोग भी पांच तत्व इस्तेमाल करते हैं, आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, हम रोज इस्तेमाल करते हैं। ये तो वैज्ञानिक क्या करता है, वो इनकी महीनता में जाता है। जैसे वायु की महीनता में जाएगा, वायु में कौन कौन सी गैसेस हैं, कैसे काम करती हैं, कैसे वो बनती हैं, है ना? मेटल की जो जमीन है, धरती है, उसकी महीनता में जाएगा, उसके मॉलिकुलर लेवल में जाएगा। पानी की महीनता में जाएगा, अग्नि की महीनता में जाएगा, और उसके महीनता में जाकर के वो नए नए एक्सपेरिमेंट करके क्या बना देते हैं, एयर कंडीशनर बना दिया, फ्रिज बना दिया, ट्रेन बना दी, प्लेन बना दिया, है ना? नहीं, वो भी तो हमारे जैसे इंसान थे, और इसलिए आज हम उनको याद करते हैं क्योंकि उन्होंने इन पांच तत्वों की महीनता में जाकर के उनको, जैसे एक एक दो भाइयों ने देखा कि पानी उबल रहा था, तो ऊपर की ढक्कन था, ढक्कन जो ऊपर था ना, पानी के भगोने का ढक्कन था, वो ऊपर उछल रहा था पानी के उबलने के साथ, तो उसने कहा इसमें जो भाप बन रही है, भाप से ढक्कन ऊपर उठ जाता है, भाप में इतनी ताकत है, तो उसने उसी को एक्सपेरिमेंट करके क्या बनाई, इंजन बना दिया, गाड़ी का इंजन बना दिया, है ना। तो ऐसे ही अगर हम बाबा के बच्चे, बाबा की जो बातें, बाबा जो ज्ञान हमें देते हैं उसकी महीनता में जाएं, मंथन करें गहराई से, तो फिर हम अच्छे पुरुषार्थी, जो बाबा के तीव्र पुरुषार्थी बन सकते हैं, तीव्र पुरुषार्थी बनके फरिश्ता बन सकते हैं, बाप समान बन सकते हैं, संपन्न और संपूर्ण बन सकते हैं। तो आज हम इसी बात पर आपसे चर्चा करेंगे। पहले हम थोड़ा सा, जैसे स्वराज्य अधिकारी का अर्थ क्या है, स्व माने आत्मा, राज्य माने राज्य, अर्थात आत्मा की तीन शक्तियां हैं, मन बुद्धि और संस्कार, तो इन तीनों पर आत्मा का राज्य हो, आत्मा की सूक्ष्म कर्मेंद्रियां कौन सी हैं, मन बुद्धि और संस्कार, और स्थूल कर्मेंद्रियां शरीर के अंदर कौन सी है, आंख नाक कान मुख और त्वचा, या जो ऊपर स्किन है हमारी पूरी, त्वचा, है ना, ये सूक्ष्म कर्म, ये स्थूल कर्मेंद्रियां हैं, और फिर शरीर में आठ अंग हैं। तो आत्मा अगर शक्तिशाली है, अगर आत्मा शक्तिशाली है तो मन बुद्धि संस्कार उसके कंट्रोल में रहेंगे, अर्थात उसका उसका कहना मानेंगे, उसकी आज्ञा पे चलेंगे, जब चाहे जहां चाहे हम मन को टिका सकेंगे, अपनी बुद्धि से यथार्थ निर्णय ले सकेंगे, हमारे पुराने संस्कार हमें तंग नहीं करेंगे, आंखें नाक कान मुख और त्वचा जैसा हम चाहेंगे मर्यादा के अंदर श्रीमत के अंदर उसी तरह से व्यवहारिय करेंगे, और हमारे आठ अंग जो हैं, ब्रेन, इम्यून सिस्टम बीमारी से लड़ने का सिस्टम, लंग्स, हार्ट, पेट आंते और पेट लिवर, हमारे हार्मोन्स थायराइड पेनक्रियाज और दूसरी ग्लैंड्स जो हैं हमारी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी ठीक हार्मोन्स निकालेंगे, हमारे जोड़ हड्डियां जोड़ मसल्स ये भी ठीक काम करेंगे, हमारी किडनीज गुर्दे जो खून साफ करते हैं वो भी ठीक काम करेंगे। अगर हमारे वो ठीक काम नहीं भी कर रहे हैं तो उनको हम अपने, आत्मा शक्तिशाली होगी, आत्मा ड्राइवर है ना गाड़ी का, अगर आत्मा शक्तिशाली होगी तो क्या होगा, वो ड्राइवर पुरानी गाड़ी को भी अच्छे से चला पाएगा, पुरानी गाड़ी है ना हमारी, इस गाड़ी को भी अच्छे से चला सकेगा। एक अच्छा ड्राइवर क्या करता है, पुरानी गाड़ी को भी अच्छा चला देता है, उसको पता होता है, और एक अनाड़ी ड्राइवर क्या करता है, नई गाड़ी को भी क्या करता है, नई गाड़ी को क्या करेगा, उसको भी जल्दी खराब कर देता है, मेंटेन नहीं करता ना तो खराब कर देता है। तो चलिए हम आपसे अभी इस बात पर गहराई से चर्चा करेंगे कि कैसे आत्मा के, पहले आत्मा की गहराई में जाएंगे, मन बुद्धि संस्कार क्या है, क्योंकि अगर हम गहराई में नहीं समझेंगे तब तक हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मन की गहराई क्या है, मन है क्या चीज, बुद्धि क्या चीज है, संस्कार क्या चीज है, जिसपे हमें कंट्रोल करना, वो गहराई से हमें समझ आना चाहिए पहले, फिर हम कैसे उनको कंट्रोल करेंगे फिर आपको बताएंगे। और उसके बाद जब स्वराज्य अधिकारी आत्मा बन जाएगी तो ज्वालामुखी याद बहुत सहज हो जाएगी, या ऐसा भी कह सकते हैं कि ज्वालामुखी याद से स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे। वो फिर कैसे पॉसिबल होगा हम उस पर चिंतन करेंगे। इससे पहले हम दो मिनट साइलेंस में बैठेंगे, बिल्कुल व्हाइट लाइट में बैठेंगे, अपने मन और बुद्धि को एकदम एकाग्र कर देंगे, अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर देंगे, अगर किसी के हाथ में मोबाइल है तो बंद कर देंगे, अगले लगभग 40 मिनट के लिए आप उसको बंद कर देंगे, और उसके इस 40 मिनट में बिल्कुल बुद्धि को एकाग्र, जैसे मोबाइल स्विच ऑफ होने के बाद ना हम किसी से बात कर सकते हैं, ना हमसे कोई बात कर सकता है, और साथ साथ ना हमें कोई एसएमएस भेज सकता है, ना किसी को हम एसएमएस भेज सकते हैं। तो अभी मन बुद्धि को एकदम, मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूं, परमात्मा भी एक चमकता हुआ सितारा है, सातों गुणों का सागर है, वो सातों गुण मुझ में आ रहे हैं, इसी स्थिति में बैठ जाएंगे, इसके अलावा कोई संकल्प कहीं से भी ना आए अगले 40 मिनट। चलिए दो मिनट बाबा को याद में बैठे, पावरफुल याद में बैठेंगे। व्हाइट लाइट में, व्हाइट लाइट रखें, व्हाइट लाइट ही रखें, रेड लाइट नहीं करें। ओम शांति। हम सभी जानते हैं कि आत्मा एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है जो यहां से लगभग 2.5 इंच अंदर और यहां से 3 इंच नीचे। आत्मा यहां नहीं है, यहां से लगभग 2.5 इंच अंदर है और यहां से लगभग 3 इंच नीचे है। एक अति सूक्ष्म जिनको इन आंखों से देख नहीं सकते, इसलिए इनको कभी भी इस आत्मा को कभी भी आंखों से देखने की कोशिश नहीं करें। कई लोग कहते हैं मुझे दिखाओ, देख नहीं सकते हैं। जैसे बिजली के तार में बिजली दिखाई नहीं देती है, ऐसे आत्मा को भी आप देख नहीं सकते हैं, किंतु जैसे बिजली की तार में करंट आ रहा है इसका प्रूफ है कि लाइट आ रही है। ऐसे ही आत्मा अगर है तो हम बोल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हार्ट चल रहा है, फेफड़े काम कर रहे हैं, पेट में खाना पच रहा है। तो आत्मा जो है इसके बारे में आज से कुछ साल पहले, लगभग 400-500 साल पहले एक कवि ने कविता लिखी थी, आपको याद होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ये कवि ने कविता क्यों लिखी थी, क्योंकि उसके दिन में उसके एक फ्रेंड की डेथ हो गई थी और शाम के समय वो बाहर आसमान में तारों को देख रहा था, दुखी था आज बहुत। वो सोच रहा था मेरे फ्रेंड की मृत्यु कैसे हो गई और मैं ठीक हूं, मैं ठीक ठाक हूं, उसका हार्ट अचानक कैसे बंद हो गया, मेरा हार्ट चल रहा है। तब उसको ध्यान आता है कि ईसा मसीह का जन्म के बारे में, कि ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तो एक आसमान में तारा देखा गया था और उन्होंने कहा इस तारे ने ईसा मसीह के रूप में जन्म लिया है। तब उसके मन में एक उसको ऐसा अंदर से संकल्प आता है, विचार आता है कि यहां एक सितारा है, वो चमक रहा है, जब तक वो चमकता रहता है तब तक सब कुछ कार्य करता रहता है। शरीर में हर अंग काम करता है, हर कोशिका काम करती है, जैसे ही वो शरीर से निकल जाता है सब कुछ बंद हो जाता है। तब उसके मन से कविता निकलती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। एक सितारा यहां से चमक रहा है और वो कैसे काम कर रहा है, कैसे सारे शरीर को चला रहा है, मैं समझ नहीं पाता हूं, मुझे आश्चर्य है। फिर दूसरी दो लाइन में लिखता है, क्या लिखता है, फिर उसको परमात्मा का ध्यान आता है, फिर लिखता है अप अबाउ द वर्ड सो हाई। इसका मतलब वर्ड सो हाई मतलब अबाउ द वर्ड मतलब संसार के परे। संसार कहां तक है, जहां तक सूर्य चांद तारे हैं, अर्थात सूर्य चांद तारों से भी परे एक और सितारा है, एक और स्टार है जो लाइक ए डायमंड, हीरे जैसा है। हीरा हीरा नहीं है, नॉट ए डायमंड बट हीरे जैसा है, डायमंड जैसा है। फिर उसने गलती किया, उसने लिखा इन द स्काई, क्या लिखना चाहिए था अबाउ द स्काई, है ना, गलती की ना उसने लिखने में। तो उसने आत्मा और परमात्मा का ऐसे उसने अपनी तरफ से, उसको ज्ञान तो नहीं था कि तो उसने अपनी तरफ से उसको एनालाइज करने की कोशिश की। तो आत्मा एक ज्योति बिंदु है, जब शरीर के बाहर है तो मन बुद्धि संस्कार उसके अंदर हैं। जैसे जब आप शांति वन में आए तो अपने साथ बॉक्स लेकर के आए थे, अपना बैग लेकर के आए थे, उसमें कपड़े भी थे, ब्रश भी था, टूथपेस्ट भी था, सब कुछ था ना, शेविंग का सामान भी, किसका जैसे भी जो पर्सनल चीजें थी वो भी थी। जब कमरा मिल गया तो उसमें फिर क्या किया आपने, बैग में से कपड़े निकाल के अलमारी में रखे, टूथब्रश बाथरूम में रखा और टेबल पे कुछ चीजें रखी, और जब जाएंगे तो क्या करेंगे, यहां से आपने कुछ सब कुछ दादी जी को सौगात दी और कुछ दादी से सौगात ली, कुछ यहां से खरीदेंगे भी और ज्ञान भी अंदर लेके जाएंगे, कुछ किताबें भी खरीद के लेके जाएंगे, और जाएंगे तो सब कुछ इकट्ठा करके क्या करेंगे, बॉक्स वापस बंद करके ले जाएंगे ना, नहीं। ऐसे जब आत्मा शरीर में आती है 5वें महीने पर गर्भ में आती है तो अपने सातों एनर्जी साथ में लेकर के आती है, मन बुद्धि संस्कार साथ में लेकर के आती है। तो आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन बुद्धि और संस्कार। आत्मा जैसे आत्मा से जो ग्लो निकलता है ना, ग्लो निकलता है, जो जब आत्मा यहां है तो उससे ग्लो निकलता है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में आत्मा है, पीछे उसके पीछे पीनियल ग्लैंड है। ये तीनों इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करती हैं। और वहां पर जैसे ड्राइवर कहां बैठता है, जहां पर सीट गाड़ी को कंट्रोल कर सके, जहां स्टीयरिंग भी है, ब्रेक भी है, लाइट्स भी हैं, एक्सेलरेटर भी है ना, क्लच भी है। तो यहां से बैठ करके हाइपोथैलेमस दोनों ब्रेन्स को कंट्रोल करता है और उससे जो इफेक्ट आता है वो पिट्यूटरी के द्वारा हार्मोन निकलते हैं, सारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो आत्मा यहां बैठती है एक ज्योति बिंदु, और इसमें सात एनर्जी निकलती रहती है हमेशा। जैसे इसमें से क्या निकल रहा है, बल्ब में से लाइट और हीट, दो एनर्जी निकल रही है, लाइट और हीट। ऐसे आत्मा में सात एनर्जी निकलती रहती है हमेशा। कौन कौन सी एनर्जी निकलती है? ज्ञान, पहली है ज्ञान, नॉलेज। ज्ञान माना एबीसीडी। ज्ञान वैसे तो इतना बड़ा है इसे लिख नहीं सकते हैं। बाबा की इतनी मुरलियां हम सुन रहे हैं, इतने सालों से सुन रहे हैं, फिर भी हर मुरली नहीं लगती है। अथाह है ज्ञान, किंतु विस्तार रूप में, विस्तार रूप में बहुत बड़ा है, विस्तार रूप में सिर्फ एबीसीडी है। ए फॉर आत्मा, बी फॉर, बोलो सभी, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन संबंध, एंड डी फॉर ड्रामा। तो मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, बाबा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, मेरे मुख्य आठ संबंध उसके साथ हैं। माता मां है, बाबा मेरी मां है ब्रह्मा के रूप में, पिता है मेरा, बाप है, टीचर है, सतगुरु है, बंधु है, सखा है, साजन है और सर्जन है। मुख्य ऐसे तो और भी बहुत सारे संबंध हैं, तो आठ संबंध मुख्य हैं। और डी फॉर ड्रामा, संसार एक ड्रामा है, नाटक है, इसमें हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, परमात्मा इसका डायरेक्टर है और कर्म सिद्धांत के अनुसार इसे डायरेक्ट कर रहा है। कर्म सिद्धांत के अनुसार जिसको मैंने दुख दिया हुआ है मुझे दुख देगा, मेरी मेरे मेरा बच्चा बन के या मेरा मां बाप बन के, मेरा दोस्त बन के, मेरा भाई बन के, बहन बन के, जिसको सुख दिया हुआ है वो मेरे को सुख देगा। परमात्मा इसमें इंटरफियर नहीं करता है, साक्षी होकर के वो पार्ट उसको डायरेक्ट करता है। इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला। तो आत्मा से ये ज्ञान निकल रहा है, सारी शरीर में जा रहा है। जैसे परमात्मा भी पहले ज्ञान का सागर है, फिर पतित पावन है। ज्ञान सुना करके हमको पावन बनाता है, पहले पावन नहीं बनाता है, ज्ञान सुना के पावन बनाता है। और पावन बनने से शांति आती है, शांति आने से प्यार आता है। तो एबीसीडी पहली एनर्जी निकलती है, दूसरी एनर्जी उससे मन पवित्र हो जाता है, फिर दूसरी एनर्जी पवित्रता की निकलती है। पवित्रता आने से, पवित्रता से शांति होती है, शांति से रूहानी प्रेम पैदा होता है, रूहानी प्रेम से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति से आनंद की स्थिति प्राप्त होती है। और आनंद की स्थिति, ये छह एनर्जी जो है शुरू की एनर्जी से हमारे अंदर आठ शक्तियां पैदा होती हैं। पहली शक्ति परखने की शक्ति, राइट रॉन्ग को परखने की शक्ति। दूसरी निर्णय करने की शक्ति, जजमेंट पावर। तीसरा विस्तार को सार में लाने की शक्ति, कछुआ जैसे। कछुआ क्या करता है? विस्तार को सार में ले आता है ना, मुंह निकाला तो खाना खाया, चलना तो पैर निकाले, नहीं तो चुप हो गया, है ना। समेटने की शक्ति, पावर टू पैकअप। सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति। ये छह गुण मिलकर के ये आठ शक्तियां बनती है। ये गुण अंदर रहते हैं, शक्तियां बाहर दिखाई देती हैं, कर्म में दिखाई देती हैं। तो सातों एनर्जी निकलती रहती हैं, और जिस जगह पर हमारे इतने सेंसिटिव न्यूरॉन्स होते हैं, ये सेंसिटिव न्यूरॉन्स पहले जो शुरू शुरू का जो पार्ट है ना, उसको बुद्धि कहते हैं। बुद्धि क्या है? बुद्धि में ही ज्ञान है, बुद्धि में ही पवित्रता है, बुद्धि में ही शांति है, बुद्धि में ही प्रेम है, बुद्धि में ही सुख है, आनंद शक्तियां हैं। तो बुद्धि क्या है? ये सातों एनर्जी जहां ज्यादा है ना, उसको बुद्धि कहते हैं। जैसे लाइट के आसपास वलय होते हैं ना, फिर एनर्जी दूसरे वलय में मन है। मन में चार बातें होती हैं, हिंदी में कहते हैं स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। इंग्लिश में कहते हैं टीम, टी फॉर थॉट्स माना संकल्प, ई फॉर इमोशंस माना भावनाएं, ए फॉर एटीट्यूड माना वृत्ति, और टी फॉर थॉट्स, सॉरी एम फॉर मेमोरीज, मेमोरीज माना स्मृति। यादें, तो बीच में बुद्धि है, बाहर हमारा मन है। और संस्कार क्या है? जो चीज हम बार बार करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, इनका मित्र जो भी काम करते हैं वो अंदर रिकॉर्ड हो जाता है, और जितनी बार वो चीज बार बार करते हैं उतना वो उतनी चीज बार बार रिकॉर्ड होती है। तो जो चीज बार बार हम करते हैं वो अंदर रिकॉर्ड हो जाती है और उसको हम कहते हैं संस्कार, हैबिट। वो चीज बार बार हमारी आदत बन जाती है करने की। जैसे स्मोकिंग करता है कोई व्यक्ति तो स्मोकर कहलाता है, उसको सिगरेट पीने की आदत पड़ जाती है। कोई अगर शराब पीता शराबी कहलाता है। तो ये हमारे मन बुद्धि संस्कार है। तो बुद्धि के बाहर मन, स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प, और स्मृति ही बेसिकली हमारे संस्कार है। तो ये हमारे तीन चीजें हो गई मन बुद्धि संस्कार। जब आत्मा सातों गुणों में भरपूर है, जब आत्मा सातों गुणों में भरपूर है, एक्चुअली बुद्धि के भी चार पार्ट हैं। वैसे आगे जो बुद्धि का सबसे सेंट्रल पार्ट है ना, जहां सातों गुण भरपूर हैं, बिल्कुल भरपूर हैं, उसे दिल कहते हैं, हार्ट ऑफ द सोल। इसलिए डाकू चोर भी कहते हैं मेरा दिल नहीं मानता इस बात को, बुद्धि नहीं यूज करते, माता कहते मेरा दिल नहीं मानता। और उसके जो बाहर परखने की शक्ति है ना, उसको विवेक कहते हैं, विवेक परखने की शक्ति। फिर है निर्णय करने की शक्ति को बुद्धि कहते हैं, बुद्धि प्रॉपर कहते हैं। और फिर हमारे जो चित्त, उसके बाद चित्त है, बुद्धि का ही पार्ट है, चित्त माना सबकॉन्शियस माइंड। जैसे दिल को कोई बात अच्छी लगती है, फिर विवेक उसको परखता है, बुद्धि जजमेंट देती है, और वो चित्त उसको, चित्त जैसे है कंप्यूटर का बटन है, बटन दबाया स्मृति में रिकॉर्ड हो जाता है, मन में रिकॉर्ड हो जाता है। अगर मैंने जजमेंट नहीं किया, मैंने निर्णय नहीं लिया, तो फाइल सबकॉन्शियस माइंड में ही पड़ी रहती, चित्त में ही पड़ी रहती है, और फिर चित्त हमारा चंचल हो जाता है। मान लो बहुत सारी फाइल्स अगर हम रिकॉर्ड नहीं करते, उसको निर्णय नहीं लेते हैं, राइट समय पर राइट निर्णय नहीं लेते, तो सबकॉन्शियस माइंड में भरती जाती है, भरती जाती है, भरती जाती है। और जब बहुत सारी फाइल्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भर जाती हैं, तो हमारा चित्त चंचल हो जाता है, एकाग्र नहीं, अशांत हो जाता है। जब आत्मा सातों गुणों से भरपूर है, सतो प्रधान शब्द कहां से आया? सतो प्रधान माना, सतो माना सात, प्रधान माना फुल। जब आत्मा सतो प्रधान का मतलब सातों गुणों में फुल है, जब आत्मा सतयुग में, सतयुग में आत्मा स्वराज्य अधिकारी है। स्वराज्य अधिकारी कब है आत्मा? सतयुग त्रेता में आत्मा स्वराज्य अधिकारी है। मन बुद्धि संस्कार कंप्लीट ऑर्डर में है, मन पर कंप्लीट रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर है। जब आत्मा, तो सातों गुण क्या करते हैं? सातों गुण से आत्मा विवेक, हमारा दिव्य विवेक, हमारा ईश्वरीय बन जाता है। जब सातों गुण भरपूर हैं दिल में, तो विवेक, विवेक माना परखने की शक्ति एकदम एक्यूरेट हो जाती है, और बुद्धि दिव्य बन जाती है। दिव्य माना दैवी गुणों से भरपूर हो जाती है, सत्यता से भरपूर हो जाती है, निर्भयता से भरपूर हो जाती है, अंतर्मुक्तता से भरपूर हो जाती है, एकाग्रता से भरपूर हो जाती है, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता से भरपूर हो जाती है, संतुष्ट रहती है, प्रसन्नता, हर्षित मुक्ता से रहती है, दैवी गुणों से, मतलब हमारी बुद्धि दैवी गुणों से भरपूर रहती है। तो बुद्धि राइट डिसीजन देती है। जो दिल में है विवेक ईश्वरीय हो गया, गॉडली, और बुद्धि सही निर्णय देती है, दैवी गुणों पर आधारित दिव्य बुद्धि हो जाती है, चित्त शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। और फिर स्मृति क्या करती है? स्मृति जो है हमारी, जो पुरानी बातें हैं ना, पुराने संस्कार जो बाबा कहते हैं, वो मर्ज हो जाते हैं। तो बुद्धि, जब दिल का असर, दिल में जो कुछ है, फिर वो हमारी बुद्धि स्मृति पे असर पड़ने लगता है। फिर हम उसी स्मृति से जो दिल में है, उसी अनुसार कार्य करते हैं। सत्युग में हमारा हर एक्शन अकर्म होता है, क्योंकि दिल के सातों गुणों पर आधारित हम कार्य करते हैं और हमारी वृत्ति सबके प्रति आत्मिक होती है। क्योंकि दिल में क्या है, दिल में ABCD है, आत्मा, बाबा, कनेक्शन और ड्रामा है। विवेक ईश्वरीय है, बुद्धि दिव्य गुणों से भरपूर है, चित्त शांत और एकाग्र है। तो स्मृति हमारी कैसी बनेंगी, हमारी स्मृतियां बनेंगी सत्वगुणी स्मृतियां बनेंगी। अर्थात बुद्धि में अब हमारी स्मृति में क्या रिकॉर्ड होता है, होता रहता है, हरेक हमको व्यक्ति आत्मा नजर आता है, हरेक को देख के हमें बाबा की याद आएगी, यह हमारे मस्तक से बाबा ही नजर आता है। इसलिए आज भी किसी देवता की हम फोटो देखते हैं तो उसको देख के हमें कैसी फीलिंग आती है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। उन देवताओं में उनको परमात्मा की शक्ति जैसे नजर आती है, ऐसे ही जब अंत में जब हम आत्माएं भरपूर हो जाएंगी सातों गुणों से, सत्व प्रधान बनने लगेंगी, तो वो सातों गुणों से हमारा क्या होगा, हमारे मस्तक द्वारा, नैनों द्वारा बाप नजर आएगा और हमारी वृत्ति सबके प्रति आत्मिक हो जाएगी, भावना सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना हो जाएगी और संकल्प कैसे होंगे, श्रेष्ठ, शुद्ध और कल्याणकारी होंगे। तो जब हमारा ऐसा मन, जब हमारा ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे जो कर्मेंद्रियां हैं आंख, वो सब में ही किसी को भी देखते हुए सबसे न्यारी और प्यारी रहेगी, सबको आत्मा देखेगी, तो कमल नयन बन जाएंगे, कमल करण बन जाएंगे। सामने कोई बुराई हो भी रही है, कोई किसी की बुराई करके, तो बुराई मेरे अंदर नहीं जाएगी, मुख से कभी गलत बोल निकलेंगे नहीं, मुख कमल बन जाएगा। आपको जैसे पता हो, रेडियो जो होता है ना, ट्रांजिस्टर जो होता है, उस रेडियो में कौन सी वाइब्रेशन जाती हैं, जो आप स्टेशन सेट करते हैं उस वही बाहर सब कुछ होता है। रेडियो के बाहर BBC भी है, विविध भारती भी है, FM भी है, रेडियो मधुबन भी है ना, सब कुछ बाहर सब वाइब्रेशन रहते हैं, किंतु आप जो मीटर सेट करते हैं वही अंदर जाता है। ऐसी जब हमारे अंदर जो चीज हमारे अंदर होती है, जो फ्रीक्वेंसी मेरे अंदर होती है, जो मैं सोच रहा होता हूं, जो मेरा चिंतन होता है, वही बात मेरे कान के अंदर जाती है, वही चीज मुझे दिखाई देती है। अगर मैं गलत सोच रहा हूं तो मुझे गलत चीज दिखाई देती है, देह के बारे सोच रहा हूं देह दिखाई देती है, अगर मैं आत्मिक स्मृति में हूं, आत्मिक स्थिति में हूं, तो मुझे सब आत्मा ही नजर आएंगे। तो इस तरह से जब हम अभ्यास करें, अभी क्या हुआ, द्वापर में क्या हुआ, द्वापर में आत्मा, एक्चुअली आत्मा सात गुणों से क्या करती थी, विवेक को नरिशमेंट दे रही थी, विवेक को पोषण करती थी, बुद्धि का पोषण करती थी, चित्त का पोषण करती थी, स्मृति वृत्ति भावनाओं का पोषण करती थी और पांचों कर्मेंद्रियां और आठों अंग उससे पोषित होते थे। किंतु जैसे ही आत्मा की एनर्जी सत्युग में 16 कला थी, त्रेता में 14 कला हो गई, द्वापर में आते आते 8 कला हो गई। जब 8 कला हो गई तो एनर्जी कम हुई आत्मा में, सात गुण आधे हो गए, तो क्या हुआ, तो अब विवेक कंफ्यूज होने लगा, बुद्धि में दिव्यता कम होने लगी, डिसीजन मेकिंग पावर कम हो गई और चित्त चंचल हो गया, एकाग्रता खत्म हो गई, कम हो गई। अब मन ने क्या किया, उस समय मन ने क्या किया, कर्मेंद्रियों से बाहर देखना शुरू किया, आंख ने बाहर देखा, पांच तत्व दिखाई देने शुरू हो गए, दूसरों की देह दिखाई देनी शुरू हुई, देह तो बहुत सुंदर थी उस समय, सत्व प्रधान, सत्व तो नहीं थी पर अजो भी सुंदर थी, तो बुद्धि देह में चली गई, देह में गई तो आसपास आसमान था, सुंदर आसमान था, पेड़ पौधे थे, हवा थी, सुंदर सुंदर पहाड़ थे, सुंदर सुंदर नदियां थी, बुद्धि उधर गई, पांचों तत्वों में गई। तो अब वो नॉलेज लेना शुरू किया, पांच तत्वों का नॉलेज लेना शुरू किया मन ने, उस पर विचार चलने शुरू हुए, उसके अनुसार भावनाएं बननी शुरू हुई, उसके अनुसार फिर वृत्ति एटीट्यूड बनना शुरू हुआ, ये चीज बहुत अच्छी है, ये चीज खराब है, फिर अच्छा और बुरा शुरू हो गया। सत्युग त्रेता में अच्छा बुरा नहीं था, फिर ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, अच्छी चीज को ले लो, बुरी को नफरत हो गई, ये नहीं लेनी है, ये सुंदर है, इसके नैनक सुंदर है, इसके सुंदर नहीं है। तो इस तरह से वो नई स्मृतियां बनने लगी और उन स्मृतियों ने हमारे चित्त को और चंचल कर दिए। वो फिर बुद्धि उसके अनुसार निर्णय लेने लगी और वो फिर हमारा उसके अनुसार हमारा विवेक भ्रमित हो गया, परखने की शक्ति खराब हो गई और वो बातें फिर दिल में जाने लगी। द्वापर में देहवान तले अंदर गया, फिर उसके बाद काम विकार अंदर गया, क्रोध अंदर गया, लोभ अंदर गया, चीजों का लोभ पैदा होने लगा, फिर कुछ लोग जो अच्छे लगते उनके प्रति मोह पैदा होने लगा। इस तरह से विकार दिल में जाने लगे और फिर विकारों के साथ साथ एक्चुअली दिल में ये पांच विकार चले गए, साथ साथ संस्कार, इनके साथ संस्कार, काम विकार के साथ दो संस्कार चले गए दिल में ही, आलस्य और अलबिलापन चला गया, क्रोध के साथ दूसरों में दोष निकालने की आदत चली गई, बदलने की भावना चली गई, लोभ के साथ शक और अनुमान चला गया, मोह के साथ चिंता और भय अंदर चला गया दिल में, और फिर अहंकार के साथ क्या चला गया, प्रेशर्स, जल्दीबाजी, हर काम में जल्दी, टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर चला गया, जो मैं कहता हूं वही ठीक है, बाकी गलत कहते हैं, मैं ही ठीक हूं, मैं ही ज्यादा समझदार हूं, ईगो है ना, और ईर्ष्या चली गई। ये फिर धीरे धीरे एनर्जी जल्दी जल्दी जलने लगी, आत्मा की एनर्जी एकदम खत्म होने लगी, कलयुग आया, कलयुग में और कम हो गई, तो देवभान ने अज्ञान, देवभान ने पूरा अज्ञान पैदा कर दिया, पवित्रता खत्म हो गई, शांति खत्म हो गई, रूहानी प्रेम खत्म हो गया, अतिंद्रिय सुख खत्म हो गया, आनंद खत्म हो गया, शक्तियां खत्म हो गई, बहुत नाम मात्र रह गई। विवेक मैंने बताया खराब हो गया, बुद्धि आसुरी हो गई, चित्त संचल हो गया, स्मृति में अब यही रिकॉर्ड होने लगा, देह देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ रिकॉर्ड होने लगे, वृत्ति सबके प्रति देहिक हो गई, भावनाएं सबके प्रति खराब हो गई, किसी के प्रति जो हमारा फायदा करे उसके प्रति अच्छी भावना, जो हमारा हमें हमारी महिमा ना करे उसके प्रति खराब भावना, दुर्भावना, संकल्प बहुत तेज हो गए, बहुत संकल्प चलने लगे, एक की बजाय पहले संकल्प सत्युग में एक संकल्प चलता था वही काम सिद्ध हो जाता था, अभी 15 संकल्प 20 संकल्प एक मिनट में चलने लगे, 30 संकल्प चलने लगे एक मिनट में, इच्छाएं बढ़ गई, हमारी आंखें क्या हो गई, चंचल हो गई, इसलिए क्या कहावत कही, जानवरों से तुलना की गई नैनों की, मृग नैनी है ना, मृग क्या होता है, चंचल होता है ना, नहीं मतलब हमारी सब कर्मेंद्रियों की तुलना किससे की गई, जानवरों से की गई, शेर जैसी आंखें है ना, देवताओं जैसी आंखें नहीं कहा है ना, कान है ना, कैसे कान, ऐसे मतलब हर चीज की तुलना जानवरों से की गई, फिर उसके बाद तो ऐसे हम गिरते चले गए। फिर शिव बाबा जब आए ब्रह्मा के तन में, उन्होंने हमको क्या दिया, सबसे पहले आते ही हमको दिल में परिवर्तन किया, स्नेह दिया, जैसे बाबा ने कहा आजकल हम सुनते हैं परमात्मा प्यार में समा जाओ, स्नेह में समा जाओ, सबसे पहली बात हमको स्नेह दिया, दिल का स्नेह दिया, दिल का स्नेह दिया, हमको ज्ञान दिया, हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, बुद्धि को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र भी कहते हैं, दिल को ही हम नेत्र तीसरी आंख भी कहते हैं, हमको तीसरी आंख दी, हमारी बुद्धि हमारे दिल में क्या दिया, ये बिठा दिया, पहले प्यार बिठाया और फिर बताया कि नहीं बच्चे तुम तो देह नहीं तुम आत्मा हो, और दिव्य बुद्धि दे दी, पैदा होने से दिव्य बुद्धि दी, तो दिव्य बुद्धि ने डिसीजन देना शुरू कर दिया, तुम देह नहीं तुम आत्मा हो, तुम इसकी लौकिक संतान नहीं, तुम परमात्मा की मेरी संतान हो, परमात्मा की संतान हो, ईश्वर की संतान हो, तुम्हारे सर्वसंबंध यहां नहीं है, तुम्हारे सर्वसंबंध मेरे साथ है, माता पिता, टीचर, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन सज्जन, सब आठों संबंध मेरे साथ है। और संसार एक ड्रामा है, डिफॉल्ट ड्रामा। तो एबीसीडी दोबारा से दिल में भर दी। देह, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ, चारों में हमारी बुद्धि जो रहती थी, उन चारों बुद्धियों से हम चारों से हमको फ्री किया। तो दिल में ज्ञान भर दिया, उससे हमारा विवेक धीरे धीरे कैसा होने लगा, ईश्वरीय होने लगा। बार बार ये स्मृति, जितनी बार ये स्मृति लेते आए तो हमारा विवेक ईश्वरीय होने लगा। बुद्धि दिव्य बाबा ने हमें दी, दैवी गुणों पर आधारित दी, तो चित्त हमारा शांत होने लगा, एकाग्र होने लगा। अब हमको स्वराज्य अधिकारी बनना है, इसके लिए क्या अभ्यास करें? ये तो मैंने प्रोसेस बताया, कैसे हम थे और कैसे हम गिरे, और बाबा आया तो हमको क्या करना है। तो अभी हमको याद, तीन बातें हैं, योग, याद और तपस्या। अब स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आत्मा को सातों गुणों से भरना पड़ेगा। सातों गुणों से भरेंगे तो अपने आप हमारा, जब फिर हमारी बुद्धि दिव्य हो जाएगी, विवेक ईश्वरीय हो जाएगा, चित्त शांत हो जाएगा, तो मन हमारे कंट्रोल में रहेगा, नहीं तो मन हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। तब संस्कारों को परिवर्तन कर सकेंगे। तो इसके लिए हमको अब चाहिए तीन बातें, पहली चीज योग, दूसरी याद, तीसरी तपस्या। योग के लिए क्या चाहिए? योग के लिए हमको तीन बातों की उसकी प्रिकॉशन है, या समझो रिक्वायरमेंट है। पहले अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास किस बात का अभ्यास? अभ्यास अपने सत्य स्वरूप में टिकने का अभ्यास। अपने सत्य स्वरूप में टिकने का अभ्यास चाहिए। मेरा जो बाप है वो सत्य है, उसकी उसमें टिकने का अभ्यास होना चाहिए। मैं चमकता हुआ सितारा हूं, इस चमकते सितारे से सात एनर्जी कहो, सात गुण को गुण कहो, जो सारे शरीर में फैल रहे हैं, उससे ही मेरा शरीर चल रहा है। मैं आत्मा सातों गुणों से हार्ट को चला रही हूं, सातों गुणों से मैं फेफड़ों को चला रही हूं, दिमाग को चला रही हूं, आंखों से देख रही हूं, ये सात गुण के द्वारा मैं देख पा रही हूं, सब काम कर रहे हैं। आत्मा ही शरीर को अंग अंग को चला रही है, एक एक कोशिका को चला रही है। मैं आत्मा निकल जाऊं तो कुछ भी काम नहीं करेगा। तो बार बार ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मैं एक सितारा यहां चमक रहा हूं और मैं सब कुछ चला रहा हूं, चलते फिरते उठते बैठते, ये बार बार अभ्यास, यही है देह मानी स्थिति का अभ्यास, आत्म मानी स्थिति का अभ्यास। परमात्मा सत्य है, वो भी एक चमकता सितारा है, सातों गुणों का सागर है, और उससे वो सातों गुण मेरे अंदर आ रहे हैं। चलते फिरते उठते बैठते, ये अभ्यास। तीसरी बात, मैंने बताया एबीसीडी, पहले आत्मा का अभ्यास, सत्य है ये, परमात्मा का अभ्यास, परमात्मा मेरा पिता है, ये अभ्यास। तीसरा, परमात्मा से हर संबंध का अभ्यास, वो मेरी मां है। कैसे मेरी मां है? शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आया हुआ है, सूक्ष्म वतन में बैठे हुए हैं, बाप दादा बैठे हैं, वो कैसे मुझे मां के रूप में प्यार दे रहे हैं, मैं उनकी गोद में हूं, मां कैसे मुझे प्यार दे रही है, कैसे मुझे पालना दे रही है। तो वो फीलिंग, मां की फीलिंग, इसी गहराई में चले जाओ, मां कैसे, सबको मां के प्यार का अनुभव है, सब अपनी मां की गोदी में कभी छोटे में थे तब गए थे ना, आज भी वो याद है, है ना? याद है, नहीं याद है, याद है मां की, याद है। तो वो मां कैसे, मैं लाइट की बॉडी में हूं, और कैसे मैं सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में हूं। फिर बाप का अभ्यास, मां के रूप में बाबा ने क्या दिया हमको, पैदा होते ही दिव्य बुद्धि की लिफ्ट दे दी है। दिव्य बुद्धि की लिफ्ट क्या होती है? बैठो लिफ्ट में और ऊपर चली जाती, सूक्ष्म वतन में चली जाती, तुरंत बाबा की गोद में पहुंच जाते हैं। भाग के रूप में क्या दिया है, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया है। उसके उसको उसमें बैठते ही हम क्या होते हैं, एकदम से अनुभव कर सकते हैं मैं चमकता हुआ सितारा हूं, बाबा भी चमकता हुआ सितारा है, ब्रह्मा बाबा भी चमकता हुआ सितारा है, सूक्ष्म वतन को देख सकते हैं, परम धाम को देख सकते हैं, ज्ञान कर्मों के गुह्य गति को देख सकते हैं। और टीचर के रूप में मुझे बाबा ने स्वराज्य अधिकारी बना दिया, सातों गुणों से भर के मुझे स्वराज्य अधिकारी बना दिया। सतगुरु के रूप में मुझे कर्म बंधन मुक्त बना दिया है, जो भी मेरे पास्ट के कर्म थे, विक्रम किए थे, वो बाबा ने मुझे भस्म करने का, बाबा ने कहा बच्चा मुझे याद करो तो भस्म हो जाएंगे, विक्रम भस्म हो जाएंगे, बिंदी बन बिंदी मुझे या, बिंदी बन मुझे बिंदी को याद करो, पास्ट को बिंदी लगा दो तो सारे विक्रम भस्म हो जाएंगे। सतगुरु क्रम में बाबा ने मुझे ये श्रीमत दे दी है, और बंधु और सखा के रूप में मेरे सारे बोझ खत्म कर दिए। साजन के रूप में मुझे सर्व गुणों से सजा दिया है, सत्यता, निर्भयता, अंतर्मुखता, एकाग्रता, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, दृढ़ता, सहनशीलता, गंभीरता, रमणीकता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार बना दिया। सज्जन के रूप में जो मेरे अंदर विकार थे ना, दिल में पांच कीड़े लगे हुए थे, दिल में, बुद्धि में, कौन कौन से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कीड़े लगे हुए थे, उनको उनको निकाल दिया है ना। ऐसी अनुभूति में बैठ जाओ, आठों चलते फिरते ही अनुभव करते रहो, कभी मां का अनुभव, कभी बाप का अनुभव, कभी टीचर का अनुभव, कभी सतगुरु का अनुभव, कभी बंधु का, कभी सखा का, कभी सर्जन का, कभी साजन का, और फिर डी फोर ड्रामा। यह भी सत्य है कि अभी तक जो कुछ हुआ है अच्छा हुआ है, कई बार हम क्या करते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा खराब किया, इसने मेरे साथ खराब किया, इसने मेरे को धोखा दिया, उन्हीं बातों को लेकर के अपनी स्थिति खराब करते रहते हैं, उसी से वैध संकल्प पैदा होते हैं, वैध समय जाता है, टाइम जाता है, एनर्जी जाती है, तो उनको बार बार अभ्यास नहीं। सब आत्मा एक्टर्स हैं, मैं भी एक्टर हूं, परमात्मा इस ड्रामा का डायरेक्टर है और कर्म सिद्धांत के अनुसार इसको डायरेक्ट कर रहा है, इसलिए अभी तक जो हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला। तो जितना इसका बार बार अभ्यास करते हैं, एबीसीडी का, चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास करते रहते हैं, तो ये पहली पहली आवश्यकता है योग में टिकने की, योग बल जमा करने की। जब योग बल में योग बल जमा होता रहता है ऐसे करते करते, तो याद आने लगती है बाबा की, याद आने में याद सताने लगती है ना, क्या करने लगती है, याद सताने लगती है, पर ये दुनिया अच्छी नहीं लगती है, फिर इस दुनिया से बेहद की वैराग्य वृत्ति होने लगती है। वैराग्य माना क्या, वैराग्य, वैराग्य माना राग से वैर, राग से वैर, किसी के प्रति राग नहीं रहता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ना राग ना द्वेष, ना लगाव ना झुकाव ना टकराव, तीनों से दूर, तो ये बेहद की वैराग्य वृत्ति पैदा होने लगती है। और तीसरा पवित्रता, तो जितनी अधिक पवित्रता, तीन बातें, अभ्यास, बेहद की वैराग्य वृत्ति और पवित्रता, तो जितना ज्यादा अभ्यास करते हैं उतना अधिक हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति पैदा होती है, उतनी पवित्रता की डिग्री बढ़ती जाती है। अगर जब आत्मा 100% प्योर बन जाती है, पवित्र बन जाती है, 100% योग लगेगा। अगर मैं 5% पवित्र बनता हूं तो 5% ही करंट आती है। और ज्वालामुखी याद किसे कहते हैं, ज्वालामुखी याद माना 100% पवित्रता। मेरा बाबा एवर प्योर है, पवित्रता का सागर है, और मैं कैसा होना चाहिए, मैं भी सदा पवित्र होना चाहिए, ऐसा कंप्लीट प्योर जिसमें 100% स्मृति में बाबा एबीसीडी बसा हो, वृत्ति 100% सबके प्रति आत्मिक हो, भावना 100% शुभ भावना शुभकामना हो, और संकल्प 100% श्रेष्ठ हो, शुद्ध हो, कल्याणकारी हो, हर बोल मर्यादित हो, हर बोल हर कर्म मर्यादित हो, हर संबंध संपर्क में हम मर्यादा के अंदर चलें, श्रेष्ठ जो भी मुरली संदेह की मुरली था, श्रेष्ठ संबंध, श्रेष्ठ संपर्क, सच्चा प्यार और क्या था? सर्व प्रकार की संपत्ति और सफलता, ये पांचों बातें प्राप्ति मुख्य प्राप्तियां हो जाए। तो जब ऐसी स्थिति हमारी होती है तो हमारा ज्वालामुखी याद अभ्यास, ज्वालामुखी याद से क्या होता है, जो 63 जन्म में पाप कर्म हमने किए हैं वो सारे विनाश होने लगते हैं। और जब विक्रम विनाश होने लगते हैं तो हमारी बुद्धि सतो प्रधान बनने लगती है, हमारे दिल सातों गुणों से भरने लगता है। और जब दिल सातों गुणों से भर जाता है तो विवेक ईश्वरीय बन जाता है, दोबारा से जैसा था सत्युग में था, विवेक ईश्वरीय बनने लगता है, बुद्धि दिव्य टोटल सत्य गुण दिव्य दैवी गुण पर आधारित हो जाती है, चित्त एकदम शांत और एकाग्र हो जाता है। अब जो दिल में वो स्मृति में आने लगता है, हमारे कर्मों में फिर वही बात आने लगती है, नए कर्म बनने लगते हैं, नए संस्कार बनने लगते हैं, वृत्ति वही आत्मिक, भावना शुभ, संकल्प श्रेष्ठ और शुद्ध कल्याणकारी। अब हमारे कर्मेंद्रिय, यही कर्मेंद्रिय हमारी आंखों में नैनों में क्या दिखाई देता है दूसरों को, परमात्मा की झलक दिखाई देने लगती है, मस्तक से बाबा दिखाई देने लगता है। तो मस्तक और नैनों में बाबा समा जाता है, या शुद्धता ही ना पवित्रता, तो मस्तक इस ऐसे दिल में दिलाराम समा जाता है। दिलाराम कौन? सच्ची दिल साफ दिल में दिलाराम समाता है। तो यह है सच्ची दिल, जिसमें सच्ची दिल कौन सी, जिसमें सात गुण भरे हुए हैं, वो सच्ची दिल है, साफ दिल है, उसमें बाबा आके दिलाराम माना ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, रूहानी प्रेम का सागर, अतिंद्रिय सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर आके समा जाता है। तो चारों तरफ हमारा कितना बड़ा आभामंडल हो जाएगा, तो वो आसपास का वायुमंडल भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे जब बाबा आते हैं तो सारे डायमंड हॉल का वायुमंडल परिवर्तन हो जाता है, जब दादी आती हैं सारा वायुमंडल परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही जब हम चलते फिरते, हमारे मस्तक हमारा क्या बन जाएगा, साइन बोर्ड बन जाएगा, आंखें चलचित्र बन जाएंगी, तो हमारे नैनों से दूसरों को क्या नजर आएगा, रूहानियत नजर आएगी, नए नए सीन नजर आएंगे, सत्य के नजारे नजर हमको भी नजर आएंगे, उनको भी नजारे नजर आएंगे। तो ये है ज्वालामुखी याद द्वारा हमारे पूरे विक्रम विनाश हो जाएंगे, स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे, माना हमारे मन बुद्धि संस्कार हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे, और व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति। और साथ साथ हमारा तन, ये पुराना तन भी हमें साथ देगा अंत तक, और इस शरीर में रहते रहते हम फरिश्ते बन जाएंगे, जो बाबा हमें कहते तीव्र, यही तीव्र पुरुषार्थ है, यही फरिश्ता स्थिति बन जाएगी, और फिर हम अंत मते सो गति हमारी हो जाएगी, हम बीज रूप स्थिति को प्राप्त करेंगे। ओम शांति।